Riha
Asishu
Yashoda
Nanda.
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एकदा एक दिन
जोर से चढ़ाइए
गृहराज जब घर की नौकरानियां काम में लगी हुई थी यशोदा माता यशोदा नंद गेहिनी नंद महाराज की रानी कर्म अंतर अन्य कामकाजों में नियुक्त आसु लगी हुई निर्ममंथ मथने लगी स्वयं स्वयं खुद दही दही यानी जो अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगी दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाकर उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीप मालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में विशेषतया बंबई में यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गौएं ऐसी सुगंधित घासें खाती थीं, जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। दही मथते समय यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गा रही थी। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण की बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को यथा पूतना अघासुर शक्तासुर तथा तृणव्रत वध को कविता में ढाल लिया था और दही मथते समय वे कवितामय गीतों को गाती रहती थी। जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावी थी। कृष्ण भावना व्रत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए।
ओम ज्ञान द्विजस्य ज्ञानञ्जनाश्वकं चक्षुर्विनीतं
कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि
गौरव
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्ण तो जैसे आप जानते हो ये बड़ा शुभ महीना है. इस महीने को क्या कहा जाता है? कार्तिक महीना. हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कार्तिक के महीने में आपको भक्ति का लाभ हजार गुना ज्यादा प्राप्त होता है. उदाहरण के लिए आप अगर बैंक में अपना पैसा डालते हो उदाहरण समय डालो तो 10% सूद मिलता है, और अगर आप कार्तिक के महीने में डालो तो 1000% सूद मिले. तो सब इसका लाभ उठाएंगे. ठीक है. तो इसी प्रकार शास्त्र में कहा गया है कि कार्तिक के महीने में भक्ति का हमें 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है. इसका अर्थ यह है कि अगर आप भक्ति निभाओगे तो इसका आपको 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा और अपने पापों के परिणाम से आप बच सकते हो. कार्तिक के महीने में भक्तों का भाव रहता है कि भगवान के शरणागत होने का अधिक प्रयास करें, जिसका अर्थ है और गहराई से श्रवणम कीर्तनम करना और गहराई से श्रीमद् भागवत को पढ़ना सुनना और गहराई से नेक्टर डिवोश भक्ति रसमृत सिंधु शिवदेश में इन ग्रंथों को पढ़ना और गहराई से भगवान की सेवा में जुड़ना. संक्षेप में तपस्या को बढ़ाओ और भौतिक आकर्षण को अगर आप हरि नाम को बढ़ाओगे शास्त्र के अध्ययन को बढ़ाओगे तो खुद ही खुद माया का प्रभाव जो है घटेगा. अब क्या चाहते हो, माया का प्रभाव बढ़े या घटे? बढ़े घटे. अगर आप माया का प्रभाव अब घटाना चाहते हो तो यही एक मौका है. तो भक्त कई बार कहते हैं कि अगर हम कार्तिक में शरणों की तुम बढ़ाएं तो उसका क्या लाभ, भौतिक आकर्षण कैसे घटेगा? क्योंकि अगर आप शरणों के कीर्तन बढ़ाओगे तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है चेत दर्पण मार्जना, इसका एक लाभ यह होता है कि हृदय की जो मैल है काम क्रोध लोभ और मन मत्सरा के रूप में ये मैल कम होने लगती है. और कार्तिक के महीने में वृंदावन धाम मथुरा धाम में निवास करके भक्ति करने का अधिक लाभ. तो आप कहोगे हम सबको चलो वृंदावन जाना चाहिए मथुरा जाना चाहिए बॉम्बे में क्या करें. पर प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि जिस मंदिर में राधा कृष्ण की स्थापना हो वो मंदिर क्या बन जाता है? तो आप इस समय बॉम्बे झू में नहीं हो, आप गांव हो. और कार्तिक के महीने में खास करके जो भगवान की दामोदर लीला है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए. इसलिए कार्तिक के महीने में हम दिन में 2 दफा भगवान को दिया अर्पण करते हैं. कम से कम 1 दफा तो हमें दिया अर्पण जरूर करना चाहिए. और ये जो दामोदराष्टका है जिसमें भगवान की दामोदर लीला का वर्णन है इसका हमें क्या करना चाहिए? उच्चारण करना चाहिए. आप में से कितने भक्तों के पास दामोदराष्टका की प्रार्थना अपने घरों में है?
सबके पास होनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम रोज अगर आप रोज मंत्र नहीं भी आ सको घर में तो आप सामरस्य का उच्चारण कर सकते हो और अगर आप किसी हालत मंदिर नहीं आ सकते दीपदान करने के लिए तो घर में दीपदान कर सकते हो। तो कार्तिक के महीने में दीपदान करने पर बहुत बल दिया गया है। स्कंद पुराण में एक कथा पढ़ते हो कि एक समय चूहा था जो रोज जो मंदिर में निवास करता था और वो चूहा रोज दिया भगवान को अर्पण किया जाता था, उसके जो रूई में घी बचता था उसको अपने भोजन के रूप में स्वीकार करता था। तो एक दिन चूहे को भूख लगी थी तो फिर वो घी चखने गया और वो घी चखने गया उस दिया का जो जल रहा था, बुझा हुआ नहीं था। और ये परिणाम हुआ कि वो चूहे जो रुई थी जिससे आग जल रही थी वो रुई चूहे के दांतों में फंस गई। तो चूहा एक तरह से जल रहा था क्योंकि वो रुई आग के साथ उसके मुंह में थी, रुई को निकालने का प्रयास कर रहा था। वो प्रयास करते करते जल गया, मृत्यु हो गई। क्या परिणाम हुआ? भगवान ने उस चूहे को मानव दे दिया, उसके पश्चात भगवान के धाम ले गए। क्योंकि चूहा जब रुई निकालने का प्रयास कर रहा था तो एक रूप से वो नाच रहा था भगवान के सामने, और क्योंकि वो नाच रहा था भगवान के सामने इस कार्तिक के महीने में तो वो भगवान के धाम गया। तो हमारे आचार्यों ने इस कथा का उदाहरण दिया है ये बताने के लिए कि अगर कार्तिक के महीने में एक चूहे को मुक्ति प्राप्त हो सकती है तो अगर आप ध्यान से सावधानी के साथ सेवा करोगे तो आपको हजारों गुना अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा था इस कार्तिक के महीने में हम सबको प्रयास कर रहना चाहिए कि हम श्रवणम कीर्तनम बढ़ाएं। आप में से कितने भक्तों ने कार्तिक के महीने में श्रवणम कीर्तनम बढ़ाया है, अपना अपना जप माला बढ़ा दिया है? बस दो तीन। और कितने भक्तों ने शास्त्रों का अध्ययन बढ़ाया है? और कितने भक्त आज के प्रवचन के बाद जब बढ़ा देंगे? तो कार्तिक का हमें लाभ उठाना चाहिए। तो ये जो दामोदर लीला है इसका ज्ञान हमें भगवद्गीता के 10वें स्कंध में प्राप्त होता है और हमारे आचार्यों के अनुसार ये दामोदर लीला बीती थी कब? दिवाली वाले दिन। दिवाली जो परसों है इधर दामोदर लीला बीती थी। तो यशोदा माता महा भगवान की माता उन्हें बार बार शिकायत आ रही थी पड़ोस की गोपियों से कि आपका बेटा हमारे घर में आता है किस लिए? मक्खन चुराने के लिए, दही चुराने के लिए। और यशोदा माता कहती थी कोई प्रमाण है क्या आपके पास कि मेरा बेटा आपके घर आया था चोरी करने? तो प्रमाण तो था नहीं, क्योंकि जब भगवान आते थे मक्खन और दही को चुराने उस समय कोई उन्हें देख नहीं पाता था। और कई बार यशोदा माता कहती थी मेरा बेटा आपके घर में क्यों आए मक्खन और दही को चुराने? मेरे घर में क्या मक्खन और दही की कमी है? यशोदा माता के पास 9 लाख गायें थी. कितनी?
9 लाख.
अंदाजा लगाओ कितना बड़ा कोशा होगा. 9 लाख गायें थी जिनमें 100 गायें थी बहुत ऊंचे कोटि की. ये 100 गायें जो थी इनसे जो दूध भी निकलता था उसका कोई खास सुगंध था. आज आप किसी विश्व के किसी स्थान में जाओ दूध जो गाय से आता है उसमें सुगंध होती है? नहीं. पर उस समय 100 गायों से दूध निकलता था जिनका अलग अलग सुगंध थी. जैसे अगर आपने दूध में दूध को अलग अलग सुगंध का बनाना है तो आपको अलग अलग मसाला डालना पड़ता है. वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर. पर इन गायों को कुदरती दूध जो निकल रहा था सुगंध के साथ. और उस समय घास भी जो इन गायों को दिया जाता था वो अलग अलग सुगंध का था. तो ना यशोदा माता सोच रही थी मेरा बेटा पड़ोस के घरों में जा रहा है मक्खन और दही चुराने के लिए, शायद पड़ोस के घरों का जो मक्खन और दही है मेरे मक्खन और दही से ज्यादा अच्छा है. तो उनके मन में भय था, शक था. तो वैसे तो यशोदा माता मानवी थी, जैसे आपने पढ़ा उनके घर में 500 नौकर थे और अक्सर इन नौकरों कई बार उनकी जो सेवक थी दासियां वो मक्खन बनाती थी. पर आज यशोदा माता ने सोचा मुझे खुद मक्खन तैयार करने दो. तो वो मथने लगी दही को और मथने के साथ यशोदा माता भगवान की बाल लीला का गुणगान कर रही थी. कंस को सूचना प्राप्त हो गई थी कि भगवान प्रकट हो चुके हैं. पहले तो उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि तुम्हारी बहन के 8वें पुत्र से तुम्हें खतरा है. और जब उन्हें सूचना मिली कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, मथुरा ब्रज में हैं, तो कंस इतने असुरिक भाव का था उसने अनेक असुरों को भेजा. क्या करने के लिए? हर बच्चे का वध करने के लिए, खास करके कृष्ण का. तो ये जो असुर राक्षस के रूप में आ रहे थे सबसे पहले कौन आया? भूतना. फिर अगसुरा, शकर सूरा, ये सारे त्रिनावर्तक बड़े 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 सुर आए राक्षस. तो भगवान ने बड़ी सरलता से उनका वध कर दिया. भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चामे देव्यम एवं विदितात होता था. मेरा प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही देव्य है. आज के जमाने में कई लोग दावा करते हैं कि वह भगवान है. तो जब उनकी परीक्षा ली जाए तो ये देखने में आता है अरे वो तो हमारे जैसे साधारण पुरुष हैं. पर परम भगवान अद्भुत लीला प्रकट करते हैं. तो छोटे से थे उतना राक्षसी आई थी खूबसूरत स्त्री के रूप में. तो बड़ी सरलता से भगवान ने दूध पिया उसके स्तन से उसकी मृत्यु हुई. तो जब इन सुनों की मृत्यु हुई इस बालक के हाथों से तो कई बार जो ब्रिजवासी थे वो आश्चर्य हो गए थे. ब्रिजवासी सोचते थे ये कौन है? ये कहीं देवता तो नहीं है? इतने बड़े असुर आए और इतनी सरलता से उनका वध हो गया. और कई ब्रिजवासी सोचते थे शायद ये नारायण तो नहीं है, क्योंकि जब गार्गा मुनि ने उनकी जन्म पत्री बनाई थी तो उन्होंने कहा था ये बालक
अलग अलग युग में अवतारित होता है, तो कई कहते थे ये नारायण तो नहीं है। और नंद महाराज और यशोदा माता योग माया शक्ति के प्रभाव में थे, वो कहते थे देखो हमारे बेटे पर भगवान की कृपा है कि बड़े बड़े असुर आए और भगवान के वध होने की वजह इन असुरों का वध हो गया। तो ये यशोदा माता एक तरफ से भगवान के लिए नहीं मत रही थी, दूसरे शत्रु तरफ से वाणी द्वारा भगवान के बाल लीला का उन्होंने गीत बना दिया था। और जीव से क्या कर रही थी, भगवान के बाल लीला द्वारा भगवान की बाल लीला का गुणगान कर रही थी। उनके हाथ में क्या था, चूड़ियां। जब वो दही मथ रही थी तो चूड़ियों से भी आवाज आ रही थी। चूड़ियों की जो आवाज है उसकी तुलना कर सकते हो करतल की आवाज के साथ, जब आप कीर्तन में करता हो जाते हो तो चूड़ियों द्वारा बड़ा मधुर आवाज आ रही थी। और जो इयररिंग्स कान में पहने थे वो नाच रहे थे क्योंकि यशोदा माता नहीं मत रही थी। तो इससे हमें एक बड़ा गहरा संदेश मिलता है, वो संदेश ये है कि जिस प्रकार यशोदा माता नहीं मतते समय जीव द्वारा क्या कर रही थी, भगवान की लीलाओं का गुणगान, तो उसी प्रकार हम सबको साधारण कार्य करते समय भगवान का गुणगान करना चाहिए। आप सब कोई नौकरी करता होगा, कोई व्यापार करता होगा, कोई घर चलाता है, कोई अध्यापक, कोई विद्यार्थी है, तो जो भी आप कार्य कर रहे हो करो, तो जीव द्वारा क्या करो, क्या भगवान के नामों का उच्चारण। तो आप कहोगे हम जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण कैसे करें, दफ्तर में दूसरे व्यक्ति भी हैं तो आप जीव द्वारा कर नहीं कर सकते, तो मन द्वारा भगवान का गुणगान करो। पर दूसरे शब्दों में व्यस्त रहो भगवान के गुणगान में। हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक भक्ति की विधियों का वर्णन है और अंत में श्री रूप गोस्वामी जिन्होंने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं जिनका एक और नाम है, हम भक्तों का एक और नाम है रूपन होगा, हम रूपक गोस्वामी के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्त रूपक गोस्वामी कहते हैं इन सब नियमों का मूल उद्देश्य यह है आप सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण इन एवर कृष्ण। तो ये संभव है अगर आप क्या करोगे, श्रवण कीर्तन करोगे। तो जिस प्रकार यशोदा माता दही मत्ते समय भगवान का गुणगान कर रही थी, हम सब चाहे रसोई बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वहां में प्रयास है ना चाहिए क्या कि हम भगवान का गुणगान करें। तो आप पूछोगे हमें भी क्या गीत बनाना चाहिए भगवान की लीलाओं पर आधारित, आप गीत बनाने के बजाय या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, या हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान की सारी लीलाएं आ जाती हैं और हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण में आप राधा रानी जी की भी उपासना कर रहे हो। हरे कृष्ण महामंत्र एक कलियुग के लिए सरल साधन है भगवत प्राप्ति का, कली कल नाम रूप कृष्ण अवतार, कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके देव नामों के माध्यम से। तो यशोदा माता क्या कर रही थी, नहीं मत रही थी, उनके मन में क्या भाव था, मुझे सबसे अच्छा मक्खन बनाना है, तो मेरा बेटा पड़ोस में दही और मक्खन चुराने कभी नहीं जाए, तो मेरा मक्खन बड़े सुगंध से होना चाहिए। इसलिए वो जो दूध जिसे दही बनाई वो कौन सा दूध था, जो सुगंधित गायों से निकला था। और मौला गाय में 100 गाय सबसे प्रसिद्ध थी, और सारे 100 गायों में 10 गाय और ज्यादा प्रसिद्ध थी जिनका दूध में बड़ा मीठा सुगंध था। इन 10 गायों में एक गाय सबसे प्रसिद्ध थी और जिसका दूध इतना सुगंधित था कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सके। और वो सुगंधित गाय का दूध से दही बना रहे मानी सुन माला बना रही थी कि भगवान के लिए बड़ा सुगंधित मक्खन बने। तो परम भगवान ये जो घटना ये जो लीला बीती है, सुबह के समय भगवान सो रहे थे और ये सुन माता जल्दी जाकर मक्खन तैयार कर रही थी, क्योंकि जागने पर उनका भाव क्या था कि भगवान को मक्खन खिलाऊंगी। और पड़ोस के कमरे में दूध उबल रहा था, वो दूध भी उबल रहा था किस लिए, कृष्णा के लिए दूध से दही बनाएंगे, दही से मक्खन बनाएंगे। यशोदा माता का हर कार्य किया जा रहा था किसकी खुशी के लिए, किसकी खुशी के लिए, कृष्णा के लिए। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव, अगर भगवान ने हमें कोई योग्यता दी है, कोई कला दिया है, कोई शक्ति दी है, कोई बुद्धि दी है, धन दिया है, ज्ञान दिया है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए किस लिए, किसकी खुशी के लिए। अगर हम कृष्णा की खुशी के लिए करेंगे तो वो है जीवन की सफलता। तो अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं ये धन इसका लाभ हम उठाएंगे, हमारे कृष्णा वालों को क्यों दे, तो भिखारी है, तो फिर आप पापों के परिणाम से उड़ जाओगे। अगर आप कहोगे भगवान ने हमें शक्ति दी है, हमें सेवा करने दो, बुक मैराथन में जाएंगे, ग्रंथ बांटेंगे, तो आप अपनी शक्ति का ठीक लाभ उठा रहे। अगर आप सोचे कौन जाएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हम तो बेइज्जती नहीं सहेंगे, हमारे से देख काम नहीं होता, हम तो आराम से घर में रहेंगे, इतवार को मंदिर जाएंगे, प्रसाद खाएंगे और खड़ा जाएंगे, सेवा हमारे से बन तो ठीक है, थोड़ा लाभ मिलेगा पर ज्यादा लाभ नहीं। तो अगर आप ज्यादा अधिक शरणागत होने का प्रयास करोगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। जैसे भगवान कहते हैं ये यथमाम प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण में आएगा उतनी मात्रा ही मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। भगवान ने ये नहीं कहा गीता में जितनी मात्रा में भी आना आओ सबकी पूरी सुरक्षा मिलेगी। तो यशोदा माता एक तरह से दही को मथ रही थी, दूसरे तरफ से दूसरे कमरे में क्या हो रहा था, चूहे में चूल्हे में दूध उबल रहा था। और माता को इतनी देर में भगवान जाग गए, भगवान जाग गए और चलते चलते आए माता के पास। माता तो भगवान का गीत गा रही थी उनके बाल लीला का, और वो मक्खन तैयार कर रही थी, तो माता ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर माता ने बेटा बैठ गया उनकी गोद में, और एक तरफ से माता माता के स्थान से दूध पी रहा था, दूसरी तरफ से माता क्या कर रही थी, मक्खन बना रही थी, दही बना मथ रही थी। उसी समय पड़ोस के कमरे में जो चूल्हे में दूध उबल रहा था वो ज्यादा उबल गया, दूध नीचे गिरने लगा, तो माता को भागना पड़ा। चिल्लाकर वो बोल सकती थी नौकराने को वो दूध उठा, दूध का लो बर्तन उठा दो, पर माता की इच्छा थी मेरे बेटे की हर सेवा मैं खुद अपने हाथों से करूं। तो माता ने बेटे को नीचे बिठाकर पड़ोस के कमरे में गई उस उबलते दूध को चूल्हे से नीचे उठाने के लिए। कभी कभी आप लोग भी भागते हो गए चूल्हे में दूध उबल रहा है, दादा बोल रही है उसको नीचे उठाने के। तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। और एक और विशेष संदेश ये है, जब माता दही मथते समय भगवान की बाल लीला का गुणगान कर रही थी उस समय वो अत्यंत आनंद में थी. She was very happy, आनंद में थी. तो इसे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम जीव द्वारा भगवान का उच्चारण करें, अगर हम मन बुद्धि का उपयोग करें भगवान की सेवा में, तो आप सदा प्रसन्न रहोगे. हम भौतिक समाज में प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए. हम सोचते हैं धन कमावे और कोई सुविधा प्राप्त हो जाए तो हम सुखी बन जाएंगे, पर यह भूल है. भौतिक संसार में आप चाहे पूरे पृथ्वी के राजा के लिए बन जाओ, आप सदा निराश रहोगे, बेचैन रहोगे, दुखी रहोगे. अगर आप किसी प्रकार से भगवान के शरणागत हो जाओ हरि नाम के माध्यम से, तो हर स्थिति में आप क्या रहोगे, संतुष्ट रहोगे. तो ईश्वर माता भगवान का गुणगान करते समय अत्यंत आनंद में थी क्योंकि भगवान का गुणगान कर रही थी. तो जब वो भागी दूसरे कमरे में दूध को चूल्हे से नीचे निकालने उठाने के लिए, तो भगवान को बड़ा गुस्सा आ गया. भगवान रोने लगे और गुस्से में उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लेकर मटकी को तोड़ दिया, जिससे सारा जो दही थी मक्खन था सब बाहर पूरे कमरे में फैल गया. अक्सर जब मटकी टूटती है पत्थर फेंकने से तो आवाज आती है, लेकिन जब भगवान ने पत्थर फेंका मटके को तोड़ने के लिए कोई आवाज नहीं आई. इसलिए यशोदा माता जो पड़ोस के कमरे में थी उन्हें ये पता भी नहीं लगा. तो जब वो वापस लौटी अपने कमरे में, अपने रसोई में, तो उन्होंने देखा, अरे टूटा हुआ मटका, सब जगह दही मक्खन. तो वो समझ गए, हाँ ये मेरे बेटे की शरारत है. और फिर उन्होंने देखा कि बेटा तो उस कमरे में है ही नहीं. और फिर उन्होंने आगे देखा बेटे के चरण के निशाने, तो वो समझ गई ये मेरे बेटे की शरारत है. और माँ को थोड़ा गुस्सा आया, एक तरफ से पड़ोस की गोपियां सदा शिकायत कर रही हैं, दूसरी तरफ से शैतान लड़के ने मटकी तोड़ दी, इतनी मुश्किल से मैंने वो दही बनाई थी सब बेकार हो गई, और ऊपर से भगवान ने दही और मक्खन को चुरा कर ले गए एक दूसरे कमरे में जहाँ की खबे और बंदर आते थे और बंदरों को खिलाने लगे, कौओं को खिलाने लगे, बंदरों को खिलाने लगे, कौओं को खिलाने. तो यशोदा माता और भगवान जब कौओं को खिला रहे थे और बंदरों को, उन्हें शक था मेरी माँ जरूर आएगी मुझे डांटने के लिए. तो एक तरह से तो बंदरों को बुला रहे थे, आओ आओ खाओ 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 खाओ. दूसरी तरफ से दायना बाया आगे पीछे देख रहे थे मेरी माँ कब आएगी मुझे पकड़ने के लिए, उनका पूरा विश्वास. तो माँ का बेटे को ढूंढने में कोई कठिन कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि भगवान के पैरों के निशाने से उन्हें पता लग गया मेरा बेटा कहाँ कुछ बैठा है. और जब माँ वो गई बेटे के पास एक लकड़ी छड़ी लेकर गई माँ, बेटा भाग गया. माँ को देखते ही भाग गया. वैसे भगवान को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, किसान काम है. बड़े बड़े योगी भी भगवान को नहीं समझ सकते, बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान को नहीं समझ पकड़ सकते. भगवान को पकड़ना बहुत मुश्किल है. सेवोम के ही जीवा दो स्वयमेव स्फुरात यदा. अगर आप भगवान को पकड़ना चाहते हो तो एक ही माध्यम है, क्या है, सेवा और कोई माध्यम नहीं, धन नहीं, बौद्धिक शिक्षा नहीं, बौद्धिक ज्ञान नहीं, इत्यादि। तो यशोदा माता जब वहां पहुंची अपनी छड़ी को लेकर, तो बेटा देखते ही भाग गया वहां से और माता बेटे के पीछे भागी। हालांकि माता का वजन जरा भारी था, बेटे का वह हल्का वजन करता, अंत में माता ने बेटे को पकड़ लिया। क्योंकि भगवान को आप पकड़ सकते हो केवल भक्ति के माध्यम से। वैसे तो यामराज भी भगवान से डरते हैं, हम सब यामराज से डरते हैं कि नहीं। यामराज ने यामदूत तो को क्या कहा भागवत में 36 करने कि भविष्य में कभी भी किसी वैष्णव के निकट मत जाना, तुम्हारा अधिकार केवल उन लोगों पर है जिनके जीव से हरि नाम नहीं निकलता, और जिनके मुंह से हरि नाम निकलता है उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आपका कहे तो बड़ी अच्छी बात है, हम सबके ऊपर यामराज का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर आप अपने भक्त की स्थिति का दुरुपयोग करोगे फिर यामराज का अधिकार आ जाएगा आप। अगर आप तन मन धन से शरण आगे तो भगवान के फिर यामराज कहेगा एग्जेम्प्टेड, कोई अधिकार नहीं है ना। तो भगवान को यशोदा माता ने पकड़ लिया, जब पकड़ा वो डांटने लगी तो भगवान रोने लगे। वो कहते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स इंग्लिश में, नकली आंसू। कई बार बच्चे नकली आंसू निकल निकालते हैं कुछ खास सुविधा को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान रोने लगे, जिससे माता समझ गई कि मेरा बेटा डर गया है छड़ी को लेकर, तो मैं छड़ी को फेंक दी। और माता ने कहा तुम्हें सबक मैंने जरूर सिखाना है, क्यों तुम बहुत शरारती हो, मटकी तोड़ी तुमने, कई बार पड़ोसियों के घर चले जाते हो मक्खन चुराने, ये करने ये करने, तुम्हें मुझे बांध लेना चाहिए। और माता को एक और भाई ये था कि अगर मेरा बेटा घर से निकल जाए, क्योंकि मैंने आज उसे डांटा है, तो उसको ढूंढने में भी मुसीबत होगी। तो माता ने सोचा सबसे अच्छा उपाय है इसको बांधो थोड़े समय के लिए। तो माता ने बेटे को बांधने का प्रयास किया, घर में एक रस्सी थी उनके पास, वही रस्सी से भगवान को बांधने का प्रयास किया। भगवान को छोटे थे, कोई पहलवान या मोटे व्यक्ति नहीं, कोई पतले छोटे, तो उनको बांधने के लिए एक रस्सी बहुत थी। तो भगवान को बांधने का जब प्रयास किया एक रस्सी से, वो रस्सी कितनी छोटी निकली। तो हमारे आचार्यों ने लोमड़ी के भाव पर हमें उपदेश दिया है। एक उंगली का अर्थ है कि अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे जब आप इस पर में जुड़ते हो और आप कहते हो हमें तो दीक्षा चाहिए, तो आपको कहते हैं 16 माला करो थोड़े 2 साल के लिए, 4 नियम का पालन करो पहले, तो लोग घबरा जाते हैं। अरे नियम का पालन ये सब तो बहुत मुश्किल है, हमें तो ऐसा गुरु चाहिए, ऐसी संस्था चाहिए जहाँ दीक्षा भी मिल जाए और कुछ बंधन भी नहीं हो, तो कुछ दीक्षा भी हो जाए कुछ बंधन भी ना हो, फिर आपको असली फल नहीं मिलेगा, नकली फल मिलेगा। ऐसे लोग नकली सोना पहनते हैं, असली सोना चाहिए तो दाम बढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एक रस्सी से जब यशोदा माता बांधने गई तो वो रस्सी दोंगी छोटी निकल गई, माता आश्चर्य हो गई थी। तो एक उंगली का भाव है कि आप प्रयास करोगे तो ही भगवान को क्या समझ पाओगे। दूसरी का भाव है कि अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो भगवान की कृपा से ही समझ सकते हो। ये नहीं हम धनी व्यक्ति हैं, हमने इतना दान दिया है तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से ही आप भगवान को समझ सकते हो। उन्हीं मतलब लॉज मर्सी की अंडरस्टैंडिंग लॉ। तो यशोदा माता ने कई रस्सियों को जोड़ा, ये जो रस्सियों को जोड़ा अगर उनकी लंबाई गिनी जाए तो हजारों फीट लंबी हो गई थी। तो जब भी जो बांध रही थी हमेशा ये रस्सी कितनी छोटी छोड़ी निकल रही थी। और जब ये दामदू लीला बीत रही थी जो पड़ोसी गोपियां थी वो सब इस लीला को देख रहे थे। और जो लील गोपियां थी यशोदा माता पर हंस रही थी। देखो कितनी निकम्मी है, एक छोटे बालक को नहीं बांट सकते। यशोदा माता प्रयास कर रही थी बेटे को बांधने के लिए पर सिर से फूल नीचे गिरते गया और यशोदा माता पसीना निकल रहा था पूरे शरीर में। वो घबरा रही थी क्यों मैं नहीं बांट सकती मेरे बेटे को, क्या मेरे बेटे में क्या योगिक सिद्धि है कि जितनी रस्सियों को मैं जोड़ती हूँ ये रस्सियाँ अंत में तो भी छोटी निकल आती है। ये सुनना माता चिंता में थी। तो भगवान को अगर आप समझना चाहते हो तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास का अर्थ क्या है, हरि नाम करो, शास्त्र पढ़ो, चार नियम का पालन करो, शास्त्र पर आधारित जीवन को बिताओ। और जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त बड़ी श्रद्धा से प्रयास कर रहा है मेरे आदेश का पालन करने के लिए तो भगवान आपको बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा ज्यादा दृढ़ होकर आप भगवान की सेवा में जुड़ सको। तो परम भगवान ने देखा एक तरफ से गोपियां हे माता की हंसी उड़ा रही, दूसरी तरफ से मेरी माता भी निराश हो रही है मुझे बांध नहीं सकती। भगवान ने कहा अब बांध दो। वे भगवान मान गए क्या कि यशोदा माता उन्हें बांध सके। यशोदा माता ने बेटे को कैसे बांधा, रस्सी से, हाँ प्लास्टिक की रस्सी थी या जूट की। यशोदा माता ने बेटे को बांधा प्रेम और भक्ति की रस्सी से। प्रेम और भक्ति के कारण यशोदा माता अपने बेटे को बांध सकी। तो अगर आप भगवान को बांधना चाहते हो तो किस चीज की आवश्यकता है, प्रेम और भक्ति। भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयोजन। प्रेम और भक्ति के साथ अगर आप मुझे तुलसी का पत्ता जल भी अर्पण करोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। अगर भगवान किसी चीज के भूखे हैं तो किस चीज के भूखे हैं, प्रेम और भक्ति के। और ये भूखे भगवान में किस लिए, हमारे सुधार के लिए। अगर हम प्रेम और भक्ति के साथ भगवान के शरणागत होने का प्रयास करें तो फिर हम भगवान की कृपा प्राप्त हो सकते हैं। तो यशोदा माता ने भक्ति और प्रेम के माध्यम से बेटे को क्या किया, बांध दिया। हाँ बेटा बंदा रहा। जब भगवान को बांध दिया था भगवान ने अपने मित्रों को बुलाया सुबल मधु मंगल सबको कहा खोदो ये गांठ। तो कहीं ने प्रयास किया खोलने के लिए कोई नहीं खोल पाया। मधु मंगल सुबल कोई नहीं खोल पाया, क्यों, क्योंकि गांठ किसने बांधी हुई थी, यशोदा माता ने अपने प्रेम और भक्ति की। फिर आगे आप पढ़ते हो किस प्रकार भगवान ने यमुना अर्जुन दो पेड़ों का उद्धार किया। तो भगवान तो खल के साथ बंधे हुए थे और भगवान नारद मुनि ने कुबेर के दो पुत्र जो शराब के नशे में आकर बड़े घमंडित हो गए थे उन्हें श्राप दिया था तो भेड़ बनोगे देवताओं के 100 वर्षों के लिए, जिसके पश्चात क्या बनोगे भगवान का दर्शन पाकर। तो भगवान को याद था कि मेरे भक्त ने ये वचन दिया है, तो भगवान ने अपने उखल को घसीटा, उखल दो पेड़ों के बीच में फंस गया। और जब भगवान ने खींचा तो वो उखल के प्रभाव से वो जो दो पेड़ हैं क्या हुए, नीचे गिर गए। और इन दो पेड़ों से क्या निकले, ये हमारे जो दो वृक्ष के पत्थर पकड़ लो। तो जब वो दो पेड़ गिरे, महाराज पड़ोस में ही थे, जब उन्होंने इतनी भारी आवाज सुनी, बड़े भारी पेड़ नीचे गिरे, वो भागे भागे आए, और भागे भागे आए पेड़ गिरा है बिल्कुल भगवान के निकट, भगवान बच गए। तो कहने लगे देखो क्या सौभाग्य है, मेरा बेटा बच गया, नहीं तो ये पेड़ उन पर गिरते तो मर जाता। तो यशोदा माता ने फिर नंद महाराज ने बेटे की कान को खोला और अपने संबोध में लिया। और जब यशोदा माता आई भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। फिर यशोदा माता जब रोने लगी भगवान गए अपनी माँ के पास बैठे। तो ये दामोदर लीला जिससे आप सब परिचित हो, ये दामोदर लीला का भाव संदेश हमें पूरे महीने क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप प्रयास करोगे तो फिर सफलता प्राप्त कर सकोगे। दामोदर लीला की आप सब प्रयास करोगे तो इस दामोदर के महीने में क्या होना चाहिए, हमारा भाव क्या बढ़ाएं, जप बढ़ाएं। तो अगर आप 16 माला करते हो तो 16 माला का जप बढ़ाइए, भागवतम पर अध्ययन रोज कीजिए, श्री भक्ति रस में तो सिद्धों का अध्ययन भी कीजिए, श्री उपदेश में कभी कीजिए, और अगर तपस्या बढ़ा सकते हो तो बढ़ाइए। इससे आप महीने का पूरा लाभ उठा सकोगे। तो दामोदर के महीने में ही श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जी को मिले थे, कहां राधा कुंड में। और भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद को एक आदेश दिया था, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और अनुवाद करना और उनका वितरण करना। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, जिस पर इसका के हर केंद्र में इतना बल दिया जाता है, ये आदेश भक्ति सिद्धांत जी ने कब दिया था, कौन से महीने में, कार्तिक के महीने में। तो ऐसे तो पहला भगवान ने गीता में कहा है, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है और ना। तो हर साल हमारे भक्त मुंबई में ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रयास करते हैं क्या, अधिक से अधिक मात्रा में क्या करने के लिए, ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़ने के लिए। क्या कारण है ग्रंथों के वितरण की सेवा पर इतना बल दिया जाता है, क्योंकि इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी, भगवान की वाणी के साथ है महान आचार्यों का। तो लोग जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इससे उनके हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। इसके लिए हमारे आचार्यों ने ग्रंथों के प्रकाशन और वितरण की सेवा पर बहुत बल दिया। तो बॉम्बे में आप सब हर साल जुड़ते हो कि पिछले साल आपके जो किन किन भक्तों ने ग्रंथ के वितरण की सेवा में सहयोग दिया था, बाकियों ने नहीं दिया था, कितने भक्तों ने ईमानदारी से बोली कार्तिक का महीना झूठ बोलना ठीक नहीं है, कितने भक्तों ने पिछले साल या उससे पिछले साल ग्रंथ के वितरण की सेवा में कोई सहयोग नहीं दिया,
माता है पहले भी अपने हाथ में उठाया ठीक नहीं है तो खैर चाहे आपने नहीं किया ये साल करोगे ये सेवा ये साल कौन कौन ये सेवा करना चाहते हैं सब आदमी उठा रहे तो ये जो ग्रंथों के बच्चों की सेवा है ये है समाज के उद्धार और सुधार की सेवा और ग्रंथों की सेवा हम कैसे करते हैं घर घर जाते हैं लोगों को कहते हैं गीता पढ़ो एक हमारे भक्त हैं अहमदाबाद में वो घर घर जा रहे थे गीता बांटने के लिए भक्त का नाम है विचारो घर घर जा रहे थे तो एक घर में आए पहुंचे जहाँ दो बेटे थे दोनों बेटे पैदाइशी से हैंडीकैप थे चल नहीं सकते थे लिख नहीं सकते थे डॉक्टर ने कहा था और थोड़े साल जिएंगे तो उस घर में पहुंच गए तो वहां हमारे भक्त ने प्रचार किया तो उन्होंने गीता ले ली गीता लेने के बाद गीता पढ़ना शुरू किया और अहमदाबाद में इस्कॉन का मंदिर आते गए आना आराम किया चरणा में पीना शुरू किया इसके ये परिणाम हुआ दोनों भक्त बन गए माता पिता भी भक्त बन गए एक भाई का तो कुछ साल पहले देहांत हो गया तो दूसरा भाई अभी तक जीवित है डॉक्टर ने कहा था 2 साल ज्यादा से ज्यादा अभी 12 साल हो गए तो एक भक्त हमारा एक बार घर घर जा रहा था ग्रंथ के वितरण की सेवा उसने किसके घर में घंटी बजाई घंटी बजाई किसी ने दरवाजा नहीं खोला फिर घंटी बजाई फिर किसी ने दरवाजा नहीं खोला उसने सोचा शायद घर में कोई है नहीं उसने कहा एक बार ट्राई करने दो तीसरी बार जब घंटी बजाई एक औरत आई दरवाजा खोलने के लिए औरत खोलो खोलो क्या चाहिए तुम्हें देखना भगवत गीता लाया हूं आपके लिए कहने लगी भगवत गीता तुम्हें पता है मैंने पहले दरवाजा क्यों नहीं खोला मैं उस रस्सी को ऊपर लगाकर आत्महत्या करने वाली थी तुम्हारी घंटी ने मुझे आत्महत्या से रोक दिया फिर उस भक्त ने थोड़ा प्रचार किया उसने आत्महत्या की भावना बिल्कुल छोड़ दी तो एक हमारे भक्त हैं जो भक्त बने तो मैंने पूछा कि आप कैसे भक्त बने कहा कि 5 साल पहले एक विदेशी कथा है मेरी माँ ने एक भगवत गीता खरीदी थी और मैंने गीता को पढ़ी भी नहीं माँ ने पढ़ी भी नहीं खरीद कर अपनी लाइब्रेरी में रख दिया क्योंकि बेटे की नौकरी छोड़ गई वो निराश था तेरा माँ की किस लाइब्रेरी में गया अलग अलग किताबें पढ़ना शुरू किया फिर भगवत गीता माँ थी भगवत गीता पढ़ना शुरू किया भगवत गीता जब पढ़ना शुरू किया उसके संदेह से बड़ा प्रभावित हुआ पढ़ते गया अब अच्छा था तो माँ ने गीता कब खरीदी थी 5 साल पहले कहा जब घर घर जाकर गीता पढ़ते हो हम बुक घर घर जाके पढ़ते हैं कंपनियों में जाते हैं बांटने के लिए हम रेलवे स्टेशन में स्टॉल लगाते हैं जो भी माध्यम मिले जैसे अगर किसी ने धन कमाना हो उसका सिद्धांत क्या रहता है जो भी माध्यम हो हमें तो धन कमाना है ना अगर हमें विदेश में जाना है वहां भी पहुंचाएंगे आप विश्व के किसी कोने में जाओ भारतीय व्यापारी मिलते हैं क्यों आगे देव धन कमाने के लिए जान को खतरा है तो भी धन कमाना क्या करें तो जान को खतरा है तो भी हम धन कमाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं तो उसी प्रकार भक्त खोजते रहते हैं कोई ना कोई साधन जिसके द्वारा भगवान का उपदेश आगे दिया जाए और खोजने पर अनेक सुविधाएं मिलती हैं जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने भक्तों को कहा डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स
तो प्रभुपाद जी के जो अमेरिकन शिष्य थे उन्होंने कोई बात नहीं शिष्य नहीं कहा अमेरिकन शिष्य थे उन्होंने कहा स्वामी जी वॉन्ट्स अस टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स बट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स स्वामी जी कहते हैं ग्रंथों का वितरण करो कैसे करें इन ग्रंथों का वितरण कैसे वो जरा परेशानी में थे उनकी इच्छा थी कि गुरु के आदेश का पालन किया जाए तो ये कृष्णा बुक जापान से छप कर आई थी हमारा एक डिवोटी मंदिर लौट रहा था रास्ते में एक पेट्रोल पंप में गया पेट्रोल डालने गाड़ी में पेट्रोल डाला $10 का $10 देने के बजाय उसने पेट्रोल वाले के मालिक से पूछा मैं आपको ये कृष्णा किताब दे सकता हूँ ठीक है $10 के बजे बड़े खुश हो जब हम $10 के लिए किताब यहाँ दे सकते हैं तो हर जगह क्यों नहीं दे सकते इस बार भक्त खोजते गए और ग्रंथों में वितरण के सारे क्वेश्चन में चक्रवा जी कहते थे जब तक ग्रंथों का वितरण होगा जब तक मैं हमेशा जीवित रहूंगा वहां भक्तों से निवेदन है क्या आप इस सेवा में जुड़िए आज की सभा में कई हैं जो जुड़े थे पहले इस समय कई पंख हमारे वृंदावन भी गए हुए हैं यात्रा में कई जुड़े हैं और कईयों ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि नहीं जुड़े थे अगर आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है उसका लाभ उठाने की इच्छा रहती है या नहीं सब में इच्छा है कृपा का लाभ उठाना पक्का अगर आपको कोई कहे हमारे पास एक नया मार्ग है धन कमाने का सब कौन कमाने किसको चाहिए ये राज सब उठाएंगे हाथ में तो अगर आप भगवान की कृपा चाहते हो अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे सरल माध्यम है ग्रंथों के वितरण की सेवा तो आप सबसे खास निवेदन है कि आप ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़िए आप सब अलग अलग हर रूप भगवान प्रभु हरादास प्रभु हरादास की सेना में आप सब के कौन कौन से भक्त हैं और रूपा विलास की सेना ठीक है तो आप सब जुड़िए इस सेवा में और जो नहीं है किसी के साथ वो भी जुड़िए अगर किसी को सूचना चाहिए किसके सेवा करने का किसको मिले वो तो जुड़िए हरदास से प्राचारी टेम्पल परिजन में भी है और जुड़िए आप सब जुड़िए आप बॉम्बे में जुड़ोगे विदेशों में भी हमारे भक्त दिल्ली में कोई 4,000 भक्त मैराथन कर रहे हैं आज जैसे 4,000 तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप और ये बड़ी खुशी की सेवा है अगर कोई व्यक्ति बस के नीचे आने वाला है प्रभु से खींच कर बचा दो आपको लगता है ना आपने कुछ चमत्कार किया मरने से बचा दिया तो आज लोग झेल पीकर नरक की ओर जा रहे हैं और आप अगर उनके हाथ में ग्रंथ पहुंचा दोगे तो नरक में जाने से वो क्या बच जाएंगे इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई एक शब्द भी पढ़े तो उसका उद्धार हो सकता है तो आप लोगों को उद्धार करना चाहते हो या नहीं वैष्णव जो है वो फला दुखा दुखी होता है दूसरों को दुखी देखकर तो उसका भी प्रयास रहता है कि उनका उद्धार करो आप लोग हमारा तो उद्धार हो गया हम दूसरों की कहते हैं नरक में जाने ऐसा भाव है वैष्णव बनना है तो दूसरों को उद्धार का भी सोच हरे कृष्ण मैराथन में यहाँ सबका नाम और पता का एक पैड होना चाहिए और सबका छोड़िया रूपा बोला तो हम लोग वहाँ एक टेबल लगा रहे हैं
जो भक्त हरदास प्रभु के साथ नहीं है या किसी के साथ नहीं है, जो सेवा में जुड़ना चाहते हैं, अपना नाम और पता दें, आपको भी जोड़ देंगे। ठीक है, जुड़ो।